दो दिन बाद इंस्टीट्यूट यूएसए, निक अपने ऑफिस में अपनी एक जूनियर जीनिया के साथ प्री ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट देख रहा था। जीनिया निक के जूनियर में ही आती थी, जबकि वो रॉन की गर्लफ्रेंड थी। निक, जल्दी करो, लिस्ट पूरी देखो और फिर फाइल पर सिग्नेचर करके इसे मुझे दे दो। इस बार प्री ट्रेनिंग के लिए जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनकी ट्रेनिंग का काम मुझे ही संभालना है। अथॉरिटी ने मुझे ट्रेनिंग हेड का जिम्मा दे दिया है। पता नहीं अथॉरिटी क्या चाहती है जो ये प्री ट्रेनिंग के सेशन में मुझे घुसा दिया। वो लोग तुम्हारे काम से खुश हैं? निक ने पेन निकाला और फाइल पर सिग्नेचर करने लगा। पिछली बार तुमने चार एजेंट को ट्रेनिंग देने का काम किया था, वो चारों प्रेसिडेंट सिलेक्शन के लिए भी सिलेक्ट हो गए। इस रिजल्ट के बाद वो तो तुम्हें यही चाहेंगे ना कि तुम ऐसे एजेंट और तैयार करो। इससे इंस्टीट्यूट का भी नाम बनेगा और अथॉरिटी को भी कुछ बेनिफिट होंगे। हाँ, भले ही बंदी की बड़ी बच जाए। जीनिया ने फाइल ली और सिग्नेचर देखने के बाद इस पर लिखे नाम पढ़ने लगी। इंटरेस्टिंग, उसने फाइल देखते हुए कहा। इस बार इंडिया से 7 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, मुझे ये देखकर खुशी हुई। भले ही हम इंडिया में नहीं रहते मगर हमारे पेरेंट्स इंडियन ही हैं। एक यूएसए की एजेंसी में इंडियंस की भागीदारी देखकर उस पर प्राउड हो रहा है। हाँ, ये तो है, अपना इंडिया महान है, निक भी तारीफ करता हुआ बोला। हाँ, 50 स्टूडेंट, वो आगे बोली। टोटल 50 स्टूडेंट हैं और जहाँ ट्रेनिंग होनी है वहाँ सिर्फ 48 स्टूडेंट के रहने का अरेंजमेंट है। जाने दो, स्टूडेंट के अरेंजमेंट में दिक्कत होने वाली है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इसे कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लोगी। हाँ, करना ही होगा, अब इसके अलावा और ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। मेरी जान को शांति आनी है और इस शांति को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जीनिया अपनी जगह से खड़ी हुई और जाने की तैयारी करते हुए बोली, चलो मैं चलती हूँ, जल्द ही मिलते हैं। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद निक अपना बाकी का काम करने लगा। मुंबई एयरपोर्ट, अगले दिन। मुंबई एयरपोर्ट पर प्रियल खुद को स्ट्रेस्ड महसूस कर रही थी। उसने यूएसए जाने का फैसला पक्का तो कर लिया था मगर वो अभी भी खुद को सेटल नहीं कर पा रही थी। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ा वो उसकी वजह से घबरा रही थी। उसने अर्जुन और प्रांजल दोनों को कहा, प्लीज यार यहाँ संभाल लेना, कुछ भी गड़बड़ हुई तो पता नहीं क्या होगा, पक्का हम तीनों की गंदी वाली बेइज्जती होगी। मम्मा को भी बोल दिया है कि मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स करने जा रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। झूठ बोलने के बाद अंदर से अजीब सील हो रहा है। यार अब इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, जो हो गया सो हो गया, फिर वो लाइन भी तो है, कर दिया तो डरना क्या, तुम भी उसे फॉलो करो, अर्जुन हंसता हुआ बोला। हाँ दी, आप सादा टेंशन ना लो, जो भी होगा हम उसे संभाल लेंगे। इतना बोलकर वो प्रियल के गले लगी और बोली, मैं आपको मिस करूंगी। अर्जुन भी गले लग गया और मैं भी। इसके बाद वो अलग हुआ और ड्रामा करने वाले अंदाज में बोला, देख प्रियल, अगर वो निक ना माने तो मैं हूं ना, सिंगल हूँ, कुमारा भी, तो मुझे प्रपोज कर देना, मैं कर लूंगा तुझसे शादी। प्रियल ने उसे घूरा और बोली, अर्जुन जाते जाते मार खाने का इरादा है तेरा? ना ना, अब तुम अपनी मार अपने निक के लिए ही संभाल कर रखो, अर्जुन ने कहा और फिर एक मुस्कुराहट दिखा दी। मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी आई और वो फिर से प्रियल के गले लग गया। प्रांजल तो पहले से ही उसके गले लगी पड़ी थी, कोई रो तो नहीं रहा था लेकिन चेहरों के अंदाज रोने वाले जरूर हो गए थे। प्रियल भारी गले में दोनों से बोली, मैं तुम दोनों को याद करूंगी। तभी एयरपोर्ट पर प्लेन टेक ऑफ का अनाउंसमेंट हुआ। इसके बाद सभी एक दूसरे से अलग हो गए। फिर सभी ने अपने हल्के आंसुओं को पोंछा जो ना रोने के बावजूद उनके चेहरों से निकल आए थे। चल दी, अब लेट हो रही हो वरना प्लेन निकल जाएगा और तुम निक से मिलने का मौका खोदोगी, अर्जुन ने प्रियल को कोहनी मारी। इसके बाद दोनों ने अपना सामान प्रियल को पकड़ा दिया। सब एक बार फिर से गले लगे और इसके बाद प्रियल प्लेन के लिए निकल गई। जाते वक्त एक बार के लिए उसने पीछे देखकर दोनों को बाय कहा। ट्रेनिंग प्लेस यूएसए। प्रियल यूएसए पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद उसने अपना सामान लिया और डायरेक्ट ट्रेनिंग प्लेस के लिए टैक्सी पकड़ी। वहां पहुंचने में उसे एक घंटे का टाइम लगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किसी हॉस्टल की तरह था। तीन और कतार में कमरे बने थे जिनके ऊपर एक और मंजिल थी। बीच में बड़ा सा गार्डन था। सामने वाली कतार के पीछे एक और पार्क था जहाँ काफी सारे पेड़ पौधे थे। वहाँ ऐसे अरेंजमेंट भी थे जिनका इस्तेमाल आमतौर पर अपनी ट्रेनिंग के लिए करती है, कीचड़ वाले गड्ढे, कांटेदार तार और भी बहुत कुछ। ट्रेनिंग प्लेस में ज्यादा चहल पहल नहीं थी। प्रियल वहाँ पहुंचकर गार्डन में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक लड़की दिखी जो अपने कमरे से बाहर आई थी। वो इंडियन लग रही थी। प्रियल उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ी और पास जाकर उसे पूछा, हे, तुम भी इंडिया से हो? हाँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, लड़की ने उसकी तरफ ध्यान दिया और कहा। ओ वाओ, मेरा होम टाउन चंडीगढ़ है लेकिन मैं मुंबई में रहती हूँ और वहाँ पर स्टडी करती हूँ। मेरा नाम प्रियल है और तुम्हारा? मेरा नाम आरोही है। मैं तो बहुत डर रही थी पर थैंक गॉड कोई तो इंडियन यहाँ पर मिल गया। सुनने में आया है तुम्हारे और मेरे अलावा 5 और इंडियन स्टूडेंट हैं मगर वे अभी तक नहीं आए। आरोही करली बालों वाली लड़की थी। उसका रंग हल्का ब्राउन था जबकि हेल्थ में वो ठीक ठाक थी। सेम हियर, प्रियल ने कहा। मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई, अब यहाँ मुझे पराया वाली फीलिंग भी नहीं आएगी। इसके बाद वो बोली, अच्छा मैं यहाँ अभी अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता मेरा रूम कहाँ है और उसे कैसे ढूंढना है, क्या तुम इसमें हेल्प करोगी? अगर रूम मिल जाएगा तो मैं अपना सामान सेटल कर लूंगी। हाँ क्यों नहीं, आरोही ने कहा, चलो चलकर तुम्हारा रूम ढूंढते हैं। इसके बाद वो सामने के गलियारे में चलने लगी। प्रियल अपना काफी सारा सामान गेट के पास ही छोड़ चुकी थी। उसके पास सिर्फ अपना बैकपैक था।
आरोही बोली, यहाँ एक लिस्ट लगी पड़ी है जिसमें रूम का अरेंजमेंट है। एक कमरे में दो लोग रहते हैं। मैंने यहाँ आने के बाद अपने रूममेट के नाम पर ध्यान नहीं दिया था। होप सो हम दोनों पार्टनर निकली। अगर ऐसा हुआ तो हमारी काफी अच्छी बनेगी। हाँ, प्रियल ने जवाब दिया। वैसे भी अपनी हिंदी तो हिंदी ही है, इंग्लिश में पटर पटर मुझसे नहीं करी जाती है, फीलिंग भी नहीं आती बात बताने की। आरोही ये सुनकर हंसने लगी। तब तो हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा मैच होती है, खूब जमेगी हमारी। जल्द ही दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ लिस्ट लगी हुई थी। आरोही ने लिस्ट पढ़ी। मगर लिस्ट में प्रियल का नाम तो था, लेकिन उसके नाम के आगे कमरे का नंबर नहीं। ये देखकर आरोही ने कहा, कमाल है, यहाँ तुम्हारा नाम तो है मगर तुम्हारे कमरे का नंबर नहीं। क्या? प्रियल हैरान हुई और खुद आकर लिस्ट को देखा। मगर ऐसे कैसे हो सकता है, उसे भी अपना कमरा नहीं मिला, ये तो ऑफिस में ही जाकर पता चलेगा, आरोही ने कहा। इसके बाद उसने एक तरफ इशारा किया और कहा, ऑफिस वहाँ है। प्रियल बोली, ठीक है तुम यहीं रुको, मैं जाकर आती हूँ। इतना कहकर वो ऑफिस रूम की ओर चली गई। ऑफिस में जीनिया अपना काम कर रही थी। तभी प्रियल वहाँ पहुंची और कमरे का दरवाजा खटखटाया। कमरे का दरवाजा खटखटाते ही जीनिया का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया और वहाँ उसने प्रियल को देखा। प्रियल को देखते ही वो एक बार के लिए खो सी गई। इसके बाद वो अचानक होश में आई और कहा, ओ माय गॉड, तुम तो बहुत प्रिटी हो, नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, आई एम प्रियल, आप हिंदी समझते हो क्या? प्रियल को एक फॉरेनर लड़की को हिंदी बोलते देख हैरानी हुई। जीनिया अपनी फाइल जल्दी जल्दी समेटते और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे हिंदी ही तो बोल रही हूँ, और कौन सी लैंग्वेज है ये जो मैं बोल रही हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप इंडियन नहीं लगती ना, इसलिए हिंदी बोलते देख हैरानी हुई।
मेरे मॉम डैड वो इंडियन ही हैं, इस वजह से मुझे हिंदी आती है। जीनिया ने अपनी फाइल को समेटा और फिर उसके पास आ गई। तुम यहाँ? तुम कुछ? वो मुझे मेरा कमरा नहीं मिला, यहाँ बाकी सबके नाम के आगे कमरे के नंबर हैं लेकिन मेरे नाम के आगे नहीं। एक और लड़की है, उसके नाम के आगे भी कमरे का नंबर नहीं है। ओह, एक्चुअली इस बार दो स्टूडेंट एक्स्ट्रा हैं तो कमरों की थोड़ी दिक्कत चल रही है, मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा एडजस्टमेंट मैं अपने कमरे में कर लूँगी, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती हो। प्रियल ने अपने चेहरे पर मासूमियत दिखाया और पूछा, आप स्टूडेंट हो? स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पर मेरी यहाँ एक छोटी सी पोजीशन ज़रूर है, मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग हेड हूँ। ओह, आई एम सॉरी, प्रियल ये सुनते ही घबरा गई। वो मुझे माफ़ कर देना, सॉरी, मुझे आपको मैम कहना चाहिए था। ओह बस, ट्रेनिंग हेड हूँ आंटी, नहीं जो मैम का होगी। और घबराओ मत, यहाँ सब फ्रेंडली रहते हैं, तो तुमने कोई क्राइम नहीं किया जो घबरा रही हो। फिर तुम तो रहना भी मेरे कमरे में है, हम दोनों तो फ्रेंड्स ही की नहीं जाएंगी। तुम मेरी फ्रेंड बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जीनिया टेढ़ी नज़रों से प्रियल को देखने लगी। नो, बिल्कुल भी नहीं, प्रियल ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर जीनिया प्रियल को कमरा दिखाने के लिए ले गई।